जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय के दूसरी पुस्तक बुक टू के 12वें चैप्टर द रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की संसिद्धि, उससे कुछ अंश पढ़ेंगे। इस को पढ़ने के पहले एक प्रश्न जुड़ा हुआ है जो शेरविंद इसमें उठाते हैं, क्योंकि आमतौर से हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये संसार है, ये प्रकृति है और वह ब्रह्म है। ब्रह्म चेतना में हम जाके इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वी आर लिबरेटेड फ्रॉम दी बॉन्डेज एंड बॉन्ड्स ऑफ नेचर। सो स्वाभाविक है कि ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, आकर्षण है। मुक्ति कौन नहीं चाहता है, लेकिन मुक्ति से कौन नहीं डरता है सबको श्री अरविंद एक जगह सावित्री में लिखते हैं, फ्रीडम ही आस्क्स बट नीड्स टू लिव इन बॉन्ड्स। अगर कह दिया जाए ठीक है तुम्हें मुक्त हो, आज से अपना सेलफोन यहाँ जमा कर दो और कमरे में बंद हो जाओ, तो 5 दिन के अंदर व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। तो खैर, प्रयास करते हैं लोग मुक्ति के लिए, और ब्रह्म की चेतना में ये सच है कि सारे द्वंद से मुक्ति हो जाती है। द्वंद यानी सुख दुख, अच्छा बुरा, जिसको हम लोग पुण्य पाप पुण्य कहते हैं, इन सब से मुक्ति हो जाती है। बड़ी सुंदर अवस्था है, बहुत शांति की अवस्था है, और जैसे जैसे वो स्थापित हो जाती है, स्थायी हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि फिर इस जीवन में जो स्ट्रेस है, जो वापस इसमें प्रवेश करना, द्वंद में प्रवेश करना, तो बहुत बड़ा आकर्षण है इसका, ब्रह्म में मुक्ति का। तो ये तो इससे हम लोग अवगत हैं, उपनिषदों में कहा गया, हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा द मोड्स ऑफ द सेल्फ, कि ये तीन द्वार से या तीन अवस्थाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं इसको। एक जो हमारे ही अंदर विद्यमान है भगवान, एक जो विश्व में विद्यमान है, एक जो विश्व के परे ट्रांसेंडेंट। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक खाई रह जाती है। खाई ये रहती है कि ठीक है, वह ब्रह्म है और ये जो है ये संसार है, जगत है, माया मिथ्या जो भी हम कह लें, नाम प्रकृति है, तो फिर इसका उससे क्या कोई संबंध है, कोई लेना देना है कि नहीं है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे जो ट्रेडिशनल वेदांतिन्स हैं, वो कहते हैं नहीं, ये तो माया है। माया कैसे आई, तो वो कहते हैं कि इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे आया, क्यों आया, इसमें क्यों माथे को लगा रहे हो, इससे बाहर निकल जाओ। और जब बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको तुम समझ रहे थे कि है वो वास्तव में नहीं है, और जिसको तुम सोच रहे थे कि नहीं है वास्तव में वही है। तो ये एक बहुत ही ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो सोल्यूशन नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहावत है कटिंग द गॉर्डियन नॉट। तो ये कहावत वहाँ से आई है कि एक बार अलेक्जेंडर अलक्षेंद्र ग्रीस से वो जाना चाहता था विश्व विजय पर। तो ऐसी मान्यता थी कि एक पहेली थी, गांठ थी बंधी हुई, और कहा गया था कि जो इस गांठ को पूरी खोल देगा वह विश्व विजयी बनेगा। तो अलेक्जेंडर के मन में विश्व विजयी बनने का स्वप्न था। तो वो कहता है ठीक है, बहुत लोगों ने हाथ पांव मार दिया, मैं भी प्रयास करता हूँ। तो खोलने लगा, उससे भी नहीं खुली तो अलेक्जेंडर ने आओ देखा ना ताओ तलवार निकाली और काट दी उसको। तो उसको कहा जाता है कटिंग द गॉर्डियन नॉट, ये फ्रेज है। अब कटिंग द गॉर्डियन नॉट क्या हुई कि तुमने उसको गुत्थी को सुलझा ही नहीं, काट दी, ये संसार है इसको काट दिया तुमने, छोड़ दिया, फेंक दिया भगवान के पास या ब्रह्म चेतना में चले गए। तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान जितने भी हम संबंध रखते हैं एक सगुण से, ये सभी एक प्रकार से हमारे अज्ञान की ही उपज है। हालांकि उसको मना नहीं किया जाता है और उसका कारण है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं अभी, परंतु यह उत्तर रह जाता है अनुत्तरित कि हमारे जो हृदय में भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो संकल्प है, जीवन की के अंदर जो प्रबल इच्छा है जीवित रहने की, तो ये सारी जो अंदर में हमारे विचार हैं, इन सब का कोई है सूत्र कि नहीं है, ये अचानक प्रकट हुए आपने काट दिया और चले गए, तो वहाँ पर सच्चिदानंद की बात होती है। सच्चिदानंद वह सूत्र है जो हमारी पर्सनालिटी में जो कुछ भी है उसका आधार ही नहीं है, उसका ओरिजिन भी वही है, मूल भी वही है। तो जब ये बात प्रकट होती है, जब ये बात समझ में आती है, तो वहीं से रूपांतरण का हमको पहला क्लू मिलता है। क्लू क्या मिलता है कि हम उसी की एक डिमिनिश्ड प्रतिकृति हैं। वी आर ए डिमिनिश्ड फॉर्म, ए डिमिनिश्ड ट्रूथ ऑफ समथिंग विच इज मच ग्रेटर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट ऑल्सो क्वालिटी। ना केवल एक वो क्वालिटी ही उसकी अलग है, लेकिन वहीं से ये निकला है। तो यदि यह सत्य है, जैसा कि आध्यात्मिक लाइन का एक अनुभव बताता है, दो अनुभव हैं, एक है जिसमें ब्रह्म में विलीन होना और ये संसार माया है, किंतु एक दूसरा अनुभव भी है जो अपने आप में वैलिड है कि माया और ब्रह्म के परे वे हैं जिन्होंने ब्रह्म और माया दोनों को अपने अंदर धारण किया हुआ है। ये बात श्री कृष्ण बताते हैं और गीता में बड़ी ऑथेंटिक चीज़ और उसको उसके कई जगहों पे बाद में पुराणों में इसके उल्लेख मिलते हैं, पर ट्रेडिशनल वेदांत में इसकी बात नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म की बात होती है और ब्रह्म से ऐसा लगता है कोई आप फीचरलेस चीज़ में चले गए। तो ये सच है कि जो पहला कॉन्टैक्ट होता है वो फीचरलेस से ही कॉन्टैक्ट होता है, जिसके अंदर नाम रूप सब डिजॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत पावरफुल कॉन्टैक्ट है, बहुत पावरफुल उसका इम्पैक्ट होता है हमारे नेचर के ऊपर, लेकिन इसके परे सच्चिदानंद यानी एक डिवाइन पर्सनैलिटी है और वह पर्सनैलिटी का हमारे पर्सनैलिटी में जो कुछ भी तत्व हैं हमारे व्यक्तित्व में वो वहाँ से निकले हैं और इसलिए सच्चिदानंद आवश्यक है। ना केवल आवश्यक है फिलोसफिकली, किंतु एक सत्य है जिसको अनुभव किया जा सकता है। अब श्री अरविंद इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं और देखा जाए ये बहुत ही एक लॉजिकल चीज़ है कि सच्चिदानंद, ये तीन चीज़ें इसमें हैं, सत, चित, आनंद, और इन तीनों के अंदर शक्ति समाहित है। तो सत क्या है? एग्जिस्टेंस। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है? एग्जिस्ट तो अगर कोई मुझसे पूछे तुम एग्जिस्ट करते हो, अगर कोई किसी और से पूछे तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, तो एग्जिस्टेंस है, ये एक संसार का सत्य है। तो उस एग्जिस्टेंस का स्रोत क्या है? सत, जो ट्रू एग्जिस्टेंट है, वन एग्जिस्टेंट है, लेकिन वही अनेकों 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 एग्जिस्टेंसेज में बन गया है। दूसरा आता है चित, चित यानी चेतना। अब चित के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है चित और एक है तपस। चित यानी नॉलेज, ज्ञान, लेकिन ये साधारण ज्ञान की बात नहीं, हर चीज के अंदर ज्ञान रूप में चित स्थापित है। ज्ञान से अर्थ उसकी अपनी एक अवेयरनेस है, हर अणु के अंदर भी है। हम किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते कि इसमें चित नहीं है, यानी ये अचेत है। ये हम ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हैं क्योंकि हम केवल मानव चेतना को सब कुछ समझते हैं, ये बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य तो सचेत है, बाकी सब सचेत नहीं है। लेकिन जैसे कि कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, यहाँ तक कि मेटल्स में भी किए गए हैं, और उसमें भी कि अणुओं के अंदर भी एक प्रकार से एक प्रकार की अवेयरनेस और नॉलेज काम करती है। लेकिन हम इसको नॉलेज उस सेंस में नहीं कह सकते कि जैसे हम लोग अपनी अपने आप को, अब इसको हम ऐसे एग्जांपल ले लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या प्लेन कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर नॉलेज है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ माथा चकरा जाएगा। तो ये ठीक है किसी ने फीड की है, सिस्टम बनाया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज मैकेनिकली ऑपरेट कर रही है, उसके अंदर आपने जो फीड किया उस हिसाब से वो काम कर रही है, वो डिराइवेटिव नॉलेज लेकिन है उसके अंदर, और वो जितनी नॉलेज है जो उसके लिए उपयोगी है। तो हर चीज़ के अंदर उसके उसकी जो प्रयोजन है, उसका जो स्थान है, उसके अनुसार से उसके अंदर ज्ञान कहीं ना कहीं भरा हुआ है। और ये हम देखते हैं पशु पक्षी प्लांट सब में देखते हैं। तो चित सर्वत्र है और उसी प्रकार से तपस यानी फोर्स भी सर्वत्र है। अब वो फोर्स एकदम बंधी हुई है जड़ तत्व के अंदर और मनुष्यों में अर्ध विकसित है और मनुष्य के परे देवताओं में और भी विकसित है और ईश्वर में वो पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान है। आनंद, आनंद भी सर्वत्र आनंद है और यदि आनंद नहीं होता तो अगर हम जैसे जड़ जगत में भी जाते हैं तो अगर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे हैं तो एक अलग प्रकार के जॉय की अनुभूति होती है। इवन जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि इसमें जॉय लेस है यानी कि इसमें, तो वो कुछ देर के लिए एक प्रकार से उसके अंदर जो जॉय है वो अंदर में विलुप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया है। और ये हम लोग मानव जीवन में भी जानते हैं कि जब एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई प्रकार की खुशी नहीं आ रही है तो उसका कारण क्या है। ये नहीं कि खुशी अंदर नहीं है, उसकी संभावना ख़त्म हो गई है, नहीं, वो विलुप्त हो गई है। जैसे श्वेत रंग जब विलुप्त हो जाता है तो काला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर लाइट है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वैसे ही आनंद विलुप्त रहता है। तो सच्चिदानंद, ये चित तपस कह लें या ये ट्रिनिटी कह लें सच्चिदानंद, तो ये सर्वत्र है। और इसी से हमारे ये जो तीन महान देवता निकले उन्हीं से निकले, सत यानी अनंत सत्ता। तो अनंत सत्ता जिसमें से आप सब कुछ प्रकट कर सकते हैं, अनेकों अनेकों सत्ताएं हम बना सकते हैं, वो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी सारी सत्ताओं का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से चित अनंत चेतना, वो चेतना जिसने सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांधा हुआ है, वो है विष्णु। और अनंत आनंद वो कृष्ण है और अनंत शक्ति या फोर्स ये शिव है। तो ये जो चार प्रमुख हम देखते हैं डेटीज वहीं से निकले हैं, लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद उन डेटीज की बात नहीं कर रहे हैं, पर चूंकि हम लोगों ने बात कर ली है और इन्हीं की छाया निश्चेतना में मिलती है, इन्हीं चार ओरिजिनल डेटी की। तो निश्चेतना में क्या है, वो सत बिल्कुल उसके ऐसे हो जाता है कि जैसे वो असत है, ऐसी अवस्था आती। इसको मानव चेतना से एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी मनुष्य को, इसको हम लोग बोलते हैं डीरियलाइजेशन, डिप्रेशन में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं हम, सब सुना लागे रे, सब सुना सुना लागे रे, सुना होने कुछ भी नहीं, खाली है, कुछ भी नहीं। ये हायर खाली नहीं है, लोअर वाला खाली है। मैं भी हूँ कि नहीं हूँ, संसार है कि नहीं है, तो वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ भी सत नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। ये भी भाव आने लगता है कि ये जिसको हम कहते हैं कि ये चीज़ है, अगर आप बोलोगे ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन में है कि लेकिन तुम भी हो, संसार भी ये कहेगा नहीं नहीं ये सब मिथ्या है, इट्स ऑल अलाई। उसी तरह से चेतना की ऐसी व्यवस्था है जहाँ हम बिल्कुल जैसे संज्ञाहीन हो जाते हैं। मैं तो देखता हूँ मरीजों में, लेकिन मनुष्य कभी कभी ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहाँ सब संज्ञाहीन लगता है। अशक्ति की भी अवस्था है जहाँ आपको ये लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और निरानंद की अवस्था है। तो इसी की जो छाया है वो निश्चेतना में है। मनुष्य के अंदर इन दोनों के बीच टग ऑफ वार चलता है। जब सच्चिदानंद खींचते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो सब कुछ आनंद से भर जाता है। जब हम निश्चेतना की बात सुनते हैं, इसलिए भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से हम निश्चेतना को सुनते हैं, दूसरे से अति चेतन को सुनते हैं। तो जिसकी जिसका पलड़ा भारी होता है उस तरह से हम जीवन को अनुभव करते हैं। परंतु मूल तो सच्चिदानंद है, मूल ये नहीं है, तो छाया है। और इसलिए मनुष्य की नियति है सच्चिदानंद के साथ एक होना। हमारी पर्सनालिटी के जितने भी भाग हैं, माइंड उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि माइंड उसी पूर्ण प्रज्ञा से, उसी चेतना का एक हल्का सा एक ड्रॉप है। उसी तरह हमारी जो अभी फिलहाल जो भी बल शक्ति है वो पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकती है। जो हमारे अंदर सुख दुख है वो पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकता है। और जो हमारे अंदर सीमित सत्ता है, सीमित सत्ता क्या, आई एम मिस्टर सो एंड सो, ये सीमित सत्ता है, मैं ये शरीर हूँ, ये सीमित सत्ता है, वो उस असीम सत्ता को प्राप्त कर सकती है, वहाँ तक कि वो हर किसी में, वो एक बहुत सुंदर कवि ने एक लिखा है, हर किसी में दिखती है तेरी सूरत, और ये उस हद तक जा सकता है जहाँ तेरी की जगह मेरी हो जाता है, लेकिन वो ये पर्सनालिटी का मेरी नहीं, एवरीथिंग इज़ द वन सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें शेरविन जो हम लोगों को रिवील कर रहे हैं, चैप्टर 12 द रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंद। अब पहले लेकिन एक चीज़ स्पष्ट करते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ये योग इत्यादि ये इसमें प्रैक्टिकल चीज़ जीवन है। अब पहले तो बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल क्यों है, इवन जो ब्रह्म चेतना मोड्स ऑफ सेल्फ ये प्रैक्टिकल क्यों है, ये आवश्यकता क्या है इसकी। इफ द ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग इज एन इन्फिनिट यूनिटी इन विच अलोन देर इज परफेक्ट वाइडनेस लाइट नॉलेज पावर ब्लिस एंड इफ ऑल अवर सब्जेक्शन टू डार्कनेस इग्नोरेंस वीकनेस सॉरो लिमिटेशन कम्स ऑफ आवर व्यूइंग एग्जिस्टेंस एज ए क्लैश ऑफ infinitely multiple separate existences, then obviously it is the most practical and concrete and utilitarian as well as the most lofty and philosophical wisdom to find a means by which we can get away from the error and learn to live in the truth. तो ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, कह रहे हैं कि देखो कभी आपने अपनी उंगली से लड़ाई की है, कभी होता है ना उंगली अचानक आँख में लग गई, या कॉमन एग्जाम्पल अगर आपका दांत जीभ दांत के बीच में आ जाए, कभी किसी ने अपने दांतों को मुक्का मार के तोड़ा है, हे दांत तुम बड़े खराब हो मेरे जीभ के ऊपर आगे चोट पहुंचाई, नहीं मोड़ा है क्योंकि वो अपना है दांत है ना, लेकिन किसी और का दांत हम लोग मार। अब ये क्यों है, क्योंकि ये पृथकत्व की चेतना है। तो पृथकत्व की चेतना में बहुत स्ट्रांग, और ये किस हद तक जा सकता है, सस्पिशन पॉजिटिवनेस जेलसी फियर, वो कोई और है मैं कोई और हूं, यह मेरा है वो, तो इसी को तो अज्ञान कहते हैं। अज्ञान कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, वह मेरा है वो दूसरे ने के पास चला गया। अब यहाँ पहले बहुत अच्छी एक टेस्ट होता था, अब तो टेस्ट भगवान ने बंद कर दिया, अपग्रेड हो गया होगा, अब दूसरे लेवल पे होता है। टेस्ट क्या होता था कि अब तो चप्पलें उपलें पूरी प्रॉपर हो गई हैं ऑर्गेनाइज, पहले डाइनिंग रूम से कभी कभी आश्रम से एक आध जोड़ी चप्पल चली जाती थी, तो कुछ लोग का ये रिस्पॉन्स होता था अरे यहाँ से भी चप्पल चली गई, तो भैया कोई ले गया जरूरतमंद ले गया, बहुत जरूरत वाला ही चप्पल ले जाएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बार तो हद ही हो गई, मेरी एक जोड़ी चप्पल चली गई। तो वही भाव से कि कोई ले गया, somebody needed it more, I came out very happy कि कोई ले गया जिसको जरूरत थी, खुशी भी हो रही है। अगले दिन मैं गया, मैंने देखा मेरी चप्पल पड़ी हुई है, अब कोई भूल से ले गया था, अब वो चप्पल पड़ी रह गई, पूरी रात रही, बारिश खूब हुई, मैंने कहा यह चप्पल तो बड़ी स्पेशल हो गई, मुझे यहां रहने को नहीं मिला, पूरी रात आश्रम के अंदर मेरी चप्पल को रहने को मिल गया। तो मैंने वो चप्पल बहुत संभाल के रखी, ये चप्पल तो आश्रम के अंदर रही पूरी रात। अब देखिए सोचने की चीज होती है कि ये मेरी है, तुम्हारा तो सांस भी नहीं है तुम्हारी और इसी भ्रांति में जब हम रहते हैं, देखिए भय होता है, वी सफर बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली फील दिस इज माइंड दिस इज माइंड दिस माइंड। अब पहले कहाँ से सफरिंग होती है कि कोई इसको ले ना ले, अब कोई लेगा कि नहीं वो बात की बात है पर आपकी सफरिंग तो शुरू हो गई। उसके बाद वो चीज़ आपकी बड़ी प्रिय है, अब वो चीज़ में बदलाव तो आएगा, बदलाव क्यों आ रहा है, तो ये सारी जो पीड़ा होती है ये आईनेस और माइनस के कारण है। तो इसलिए शेरविन कहते हैं प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि तुम अगर इस सत्य को पकड़ लो कि ये मेरा या तेरा नहीं है, लेकिन साथ में एक चीज़ जोड़ के ये ईश्वर का है, तो आपको केयर लेनी है, ये नहीं कि ये मैं छोड़ दो मेरा नहीं है, इट डजेंट मैटर, नहीं, ये ईश्वर का है, अभी मेरे हाथों में है, मेरे पास है, मैं इसका ध्यान रखूं, और कल को नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, वो जा रहा है भगवान जहाँ चाहे। तो ये कितनी पीड़ा जीवन की समाप्त हो जाएगी, वैसे ही जैसे हम कले क्लेश अपने दांतों से नहीं करते, अगर जीव आ जाए हम कहते हैं हमको थोड़ा और कॉन्शियस होना है, वैसे ही हम किसी और के कुछ कहने पर बोलने पर कले क्लेश नहीं करेंगे। सो यहाँ कहते हैं पहली चीज, आगे सो ऑल्सो इफ दैट वन इज इन इट्स नेचर ए फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज टू दिस प्ले ऑफ क्वालिटीज विच कंस्टिट्यूट अवर साइकोलॉजी एंड इफ फ्रॉम सब्जेक्शन टू दैट प्ले आर बॉर्न द स्ट्रगल एंड डिस्कॉर्ड इन विच वी लिव floundering eternally between the two poles of good and evil, virtue and sin, satisfaction and failure, joy and grief. तो पहले तो किसी से मुक्ति मिली कि ये मेरा है तेरा, आइनेस एंड माइनस. दूसरा joy and grief, सुख दुख वहीं से शुरू हो रहे हैं, I और माई से. नेक्स्ट लेवल क्या आ रहा है कि गुड एंड ईविल, वर्च्यू एंड वाइस, इससे प्रारंभ हो रहा है. Joy and grief, pleasure and pain, then to get beyond the qualities and take our foundation in the settled peace of that which is always beyond them is the only practical wisdom. अब इसको example ले लें. अगर अर्जुन से कोई पूछता युद्ध के बाद कि अर्जुन तुम्हें शर्म नहीं आई तुमने इतने लोगों को मारा, तो अर्जुन क्या कहते? कहते कन्हैया से पूछो. Ask Krishna, he told me. अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? ये नहीं कि आप ईगो में एक्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर सच में आपने, तो आप कहोगे ना कि भाई देखो प्लीज, ये क्वेश्चन का उत्तर तो वो देंगे. हाँ, मारा ये बात सही है. तो जैसे जैसे हम अपनी चेतना में इस भाव से रहने लगते हैं, ये आप झुटला नहीं सकते. ये नहीं कि मैं अहम से मार के बोलूं मेरा कोई रोल नहीं, नहीं. पर जेन्युइनली अगर आप इस भाव से जी रहे हैं कि यह कर्म जो हो रहा है कर्ता भी वही है और कृत भी वही है, अगर ये सच्चा भाव है, ये आपके अंदर इसका ज्ञान है, तो फिर आप इसके भी बंधन से मुक्त हो जाते हो. फेल्योर होती है तो आप ये नहीं अरे मैं फेल हो गया, और जब आपको सक्सेस मिलती है तो आह मेरे नाम की चर्चा हो रही है. दोनों चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो. तो यहाँ शेरविन कहते तो भी ये प्रैक्टिकल चीज है. तीसरा, if attachment to mutable personality is the cause of our self-ignorance, of our discord and quarrel with ourselves and with life and with others, and if there is an impersonal one in which no such discord and ignorance and vain and noisy effort exist, because it is in eternal identity and harmony with itself, then to arrive in our souls in that impersonality and untroubled oneness of being is the one line and object of human effort to which our reason can consent to give the name of practicality. तो तीन practical कारण बता रहे हैं. कई बार लोग कहते हैं क्या अव्यवहारिक चीजें हैं, ये philosophy नहीं है, व्यवहारिक चीज है. अब क्या है, हमारी personality से हम बड़े attached होते हैं, और इस हद तक attachment होता है ये तो पता चलता है. और खासकर जो professional लोग होते हैं, professional ego, मैं doctor हूँ कि तुम हो. अब मैंने सुना है मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे दवाई सूट नहीं करती है, और डॉक्टर का देखो मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो, जाओ किसी और के पास जाओ. अरे भाई वो बेचारा कंज्यूमर वो है. उसको पता है कि उसके शरीर पर ये चीज़ नहीं, और उसका मन नहीं है, फेथ नहीं है. ठीक है, आपने अपना काम कर दिया. उसका अटैचमेंट देखिए कितना होता है. उस डॉक्टर के पास मरीज क्यों चला गया? डॉक्टर ही नहीं, हर किसी के साथ होता है. तो होता है, आप कहीं भी किसी सेटअप में चले जाइए, किस डॉक्टर के पास कितने मरीज जा रहे हैं, अरे ये भी कोई सोचने की चीज़ है. यहाँ तक कि आश्रमों में सीनियर स्वामी को क्यों नहीं बुलाया, जूनियर स्वामी को क्यों बुला लिया फीता काटने के लिए, देख चुका हूँ मैं संन्यास आश्रम के लोगों में. तो अब वास्तव में ये क्या है, आई एम अटैच टू माई पर्सनैलिटी, तभी तो ये बात होगी ना. यदि मैं ये देखूँ कि सबके अंदर भगवान काम कर रहे हैं तो क्या अंतर पड़ता है. तो ये सारी चीजें श्री अरविंद कहते हैं प्रैक्टिकल है. स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ज्ञान प्रैक्टिकल है. अगर आपके पास चुनाव है कि या तो हम पीड़ा का सुख दुख में रहें, ना जाने कितने जन्म रहें, या हम इससे मुक्त होकर स्वतंत्र होकर रहें, तो दिस चॉइस इज गिवन टू अस. इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिकल जो समझदार है वो तो यही चुनेगा. कई बार लोग कहते हैं, पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपने तो ये सब छोड़ दिया चले आए. मैंने कहा मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ. किस समझदार आदमी हूँ? मैंने कहा देखो वो बेकार की चीज़ें ज़िंदगी में छोड़ के कितने सुंदर आनंद की नगरी में आ गया। ये समझदारी है कि वो समझदारी है जिसमें रोज कलह क्लेश पीड़ा कंपटीशन एम्बिशन महत्वाकांक्षा अंधा फैलाव है। समझदारी तो ये है आप अंत में जो मरीचिका के पीछे भाग रहे हो वो सत्य रूप में आपके अंदर में आ गई। अगर आपके अंदर आनंद आ गया तो आप सुख दुख के पीछे क्यों भागोगे। तो यहां पर शेरविंद प्रैक्टिकल की बात। लेकिन अब वो बात आती है जिसकी हम लोगों ने बात की कि ये तो ठीक है योगा ऑफ नॉलेज पहले आपको ले जाता है इस ओर ब्रह्म के रियलाइजेशन के साथ। लेकिन अब ये बात होती है पेज 385 पर, द नॉलेज दैट फाइंड्स द ट्रू सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिसिटी पर्सनैलिटी क्वालिटी प्ले ऑफ रिलेशंस मस्ट शो अ सम रियल वननेस इन एसेंस ऑफ बीइंग। तो ये जो था कि फिर पर्सनैलिटी का जो ये प्ले था ये क्या था, इसके पीछे भी कोई सत्य है कि नहीं है। मेरे हृदय में प्रेम उपजा, अटैचमेंट से तो पीड़ा हुई, लेकिन क्या प्रेम भी सत्य नहीं है। एक बड़ी सुंदर एक श्री अरविंद की वाणी है, सिंथेसिस ऑफ योग में ही है, मेरा तो वो एक यार्डस्टिक है। कई बार पूछते भी हैं लोग कि रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि साधना अलग है रिलेशन अलग है। तो मैंने कहा ये तुमने डिवाइड क्यों किया हुआ है। तो अगर सच में साधक हो तो जीवन की सभी गतिविधियों में तुमको साधना को ढूंढनी है। तो पूछते हैं कैसे, मेरा उत्तर है देखो अटैचमेंट इज इगोइज्म इन लव। प्रेम को रखो अटैचमेंट हटा दो, बस एक साथ में रखो छुरी। अटैचमेंट अटैचमेंट क्या होता है, मेरे लिए, आप किसी को उसके लिए प्रेम नहीं कर रहे हो, अपने फायदे के लिए प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम है ही नहीं। वो तो आप कह रहे हो प्रेम है, दूसरा भी मूर्ख बन रहा है, आप भी मूर्ख बना रहे हो। प्रेम तो कभी अपने लाभ के लिए नहीं होता है, वो तो व्यापार हो गया। तो जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन प्रेम ही प्रेम है। और संबंध के पीछे क्या आधार है, चाहे आप पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य देवता ईश्वर से, संबंध का जो आधार है वो प्रेम है, अटैचमेंट नहीं है। ईश्वर से भी हम अटैच हो सकते हैं, हमको क्या फायदा होगा, हमको क्या देंगे, भगवान से हमको क्या मिलेगा। तो कई लोग हैं जो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूछते हैं माँ से हमने ये मांगा था हमको क्यों नहीं मिला। मैंने कहा पूछना पड़ता है किस अधिकार से मांगा था। दूसरा है कि वो सर्वज्ञ है, वो दे ना दे उनकी मौज है। अगर आप मानते हो कि वो माँ है सर्वज्ञ है तो आपको ये समझना चाहिए अगर उन्होंने नहीं दिया है तो कुछ आपका शुभ सोचा है। हम तो नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या अच्छा है बुरा है, लेकिन अगर माँ नहीं दे रही हैं तो उस डिनायल में भी उनका प्रेम और उनके विजडम को देखना है। तो देखिए अपने आप ईश्वर के संबंध में भी अगर अटैचमेंट लाओगे उसमें भी मेरा गुरु, अब देखिए मारा काटी होती है सारे संसार में, मेरा गुरु बड़ा या तेरा गुरु बड़ा, दोनों गुरु अगर वहां मिल रहे होंगे माथा पकड़ के बैठ रहे होंगे, यार इनको कौन समझाया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया। मैं तो इनको लिबरेट करने आया था, इन्होंने मेरे ज्ञान को एक सेक्ट और कल्ट और रिलीजन और फंडामेंटलिज्म में बदल दिया। तो वन हैज टू बी सो केयरफुल। शेरविन कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में कि कभी भी इस योग में चलने वाला व्यक्ति नहीं है माई गुरु माई दिस थिंग माई अवतार माई गॉड, आपके लिए वो सब कुछ है yes। लेकिन अगर आप कन्वर्शन करना प्रारंभ करोगे वो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान तो अनंत है, हर किसी को अपने अपने ढंग से लेके जा रहे हैं। फॉर यू ही इज सुप्रीम बट यू आर नॉट हियर टू कन्विंस अदर्स। उसके लिए सुप्रीम ने कोई और हो सकता है उसके लिए सुप्रीम। एक बार मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, बाद में माता जी ने ये सब बातें धीरे धीरे बताई। दिल्ली में कोई किसी के घर में गया, बड़ा वो सोच के कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, अब उस घर में जो उनके पापा जी थे उनको ही वो भगवान मान रहे थे, तो सब बैठ गए। अब मुझे तो जरा अटपटा सा लगा कि कहाँ ले आए मुझे। अब उनके अंदर जितनी भी उनकी समझ थी, अब लेकिन इनको लग रहा था कि ये भगवान है। अब ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मैं ये थोड़ी उनको आप कैसे भगवान हो, मेरे ठीक है तुम्हारे भगवान है इट्स ओके, आपकी सीमा आपकी आवश्यकता के अनुसार भगवान आए हैं, नथिंग रॉन्ग, मे भी आपके लिए वही भगवान है, वो आपको आपकी जो जितनी समझ है जितनी वो है। और भगवान एक्ट करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, यही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस जिस रूप में श्रद्धा रखता है उसको मैं दृढ़ करता जाता हूँ। तो वो तो बल्कि कोई उनका नाम नहीं कुछ कोई नहीं जानता, पर वो लोग जो थे उनके आसपास जो लोग बैठे हुए थे, तो मैं अंदर अंदर बहुत हंस रहा था कि मेरे बाबूजी को भी सब लोग भगवान मानते थे हमारे मोहल्ले में और गांव में, इस थोड़ी भगवान हो गए, लेकिन ठीक है, फॉर यू ही इज गॉड, इट्स परफेक्टली फाइन। तो इस तरह से हम लोगों को ये हमारी जो पर्सनैलिटी है, अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, द नॉलेज दैट लीव्स ए यॉनिंग गल्फ बिटवीन द टू, बिटवीन द इम्पर्सनल एंड द पर्सनैलिटी, कैन बी नो अल्टीमेट नॉलेज। इसीलिए सावित्री में अल्टीमेट नॉलेज का वर्णन है, हाईएस्ट नॉलेज क्या है, इन विच द गॉड एंड वर्ल्ड बिकम ट्रू एंड वन। और इसीलिए अल्टीमेट फ्रीडम का क्या लक्षण है, इवन इन बॉन्ड्स यू आर फ्री। अगर आपको जंगल जाना है, कई बार लोग बोलते हैं अरे इन्होंने बड़े निर्जन स्थान पे तपस्या की, मुझे तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप याद आते हैं, वो बड़े निर्जन स्थान पे शुक्राचार्य ले गए थे तपस्या करवाने, या उन्होंने पहाड़ पर जाके तपस्या की। तो भाई आप तो आपने तपस्या की बहुत अच्छी बात है, पर आपको जीवन की समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है, यू हैव नेवर टैकल्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड। तो हमको तो वैसा वाला भगवान चाहिए जिसने शादी की, बच्चा भी हुआ, अब ऐसे तो एक श्री कृष्ण आते हैं और एक शेरविंद माता जी आती हैं, परफेक्ट फिट होते हैं, जिन्होंने जीवन को देखा, जीवन का सब कुछ देखा, क्योंकि यू वांट दैट। राम ऑफ कोर्स, पर राम श्री कृष्ण एक अलग डायमेंशन से हैं। तो यह जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये पर्सनैलिटी और उस इम्पर्सनल के बीच में गैप रह जाता है, इसी को रामायण की कहानी में जब माता सती कहती हैं तो बिलक बिलक के रो रहे हैं, ये कहाँ के भगवान, सच्चिदानंद ब्रह्म प्रणाम करते जा रहे हैं शिव जी, कहते देखो टेस्ट मत करना, ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। और सच तो ये है हम सब सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, अंतर ये है कि हम अचेत हैं, हम नहीं जानते, वो कॉन्शियस है, यही अंतर है। तो यहां पर कि ये गल्फ अगर रह जाता है, हाउएवर लॉजिकल इट मे सीम टू द एनालिटिकल इंटेलेक्ट, क्योंकि सांख्य के आधार पर यह डिस्टिंक्शन किया गया है पुरुष प्रकृति का, बाद में इसको ट्रेडिशनल योगा ऑफ नॉलेज ने पिकअप कर लिया कि ब्रह्म और माया, तो कहते हैं लॉजिकल एनालिटिकल कितना भी लगे लेकिन एक खाई तो रह गई बिटवीन नेचर एंड गॉड, बिटवीन पर्सनैलिटी एंड द इम्पर्सनल। हाउएवर सेटिस्फैक्ट्री टू ए सेल्फ डिवाइडिंग एक्सपीरियंस, True knowledge must arrive at a oneness which embraces, even though it exceeds the totality of things. आप सब चीज से ऊपर हो, इसका लक्षण यह होता है कि आप सब चीज में आके भी आप अपनी उस अवस्था को बरकरार रहती है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप जड़ तत्व के अंदर भी चले गए। गॉड का श्री अरविंद ने कविता लिखी है, Thou who disdainest not the worm to be nor even the clod, therefore we know by that humility that thou art God. तो God तो God है, वो अणु के अंदर भी है, तो यहां पर इसकी बात हो रही है। For there can be no such original unbridgeable chasm of duality either in the all existence itself or between any transcendent oneness and the all existent. The experience which finds at the summit of things such an original unbridgeable chasm between two contrary principles and can at most succeed in overleaping it, so that it has to live in one or the other but cannot embrace and unify is not the ultimate experience. Ab ye yahan par spasht kar dete hain ki jo ट्रेडिशनल वेदांत का अनुभव है कि देर इज द सेल्फ द ब्रह्मन और या पुरुष और उसका प्रकृति, जीवन के साथ कोई संबंध नहीं, ये माया है, ये छलना है, इल्यूजन है, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकता, वो एक पड़ाव हो सकता है बट इट कैनॉट बी द अल्टीमेट ट्रूथ। तो यहां पर ये बात स्पष्ट कर देते हैं। अब चूंकि वो प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं इसलिए वो कहते हैं फॉर द इंडिविजुअल सेंटर वी कॉल अवर सेल्व्स टू एंटर बाय इट्स कॉन्शियसनेस इनटू द डिवाइन एंड रिप्रोड्यूस इट्स नेचर इन इट्सेल्फ इज द हाई एंड मार्वेलस yet perfectly rational and most supremely pragmatic and utilitarian goal before us. अब यहाँ ultimate practical sense क्या कहती, ये नहीं कि हम इसको छोड़ के free हो गए, लेकिन वह जो supreme nature है, जो भगवान की प्रकृति, दैवी प्रकृति, परा प्रकृति जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं, उसको अपनी प्रकृति के अंदर प्रकट करना. देखिए रूपांतरण के सारे क्लूज आ रहे हैं यहां से. यानी मनुष्य की प्रकृति के अंदर दिव्य प्रकृति समाहित हो जाए, रिप्लेस कर दे, वो है अल्टीमेट रिजोल्यूशन और सॉल्यूशन. और ये संभव इसलिए क्योंकि एक दैवी प्रकृति और परा प्रकृति है. यही बात श्री कृष्ण कहते हैं और यही बात श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसी एक परा प्रकृति है जिसकी यह प्रकृति एक छाया है. सांख्य नहीं कहता है, इसलिए सांख्य दर्शन से प्रेरित जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर ये हम देखते हैं भेद, क्योंकि सांख्य के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति है और पुरुष है. लेकिन त्रिगुणात्मक प्रकृति का फिर ओरिजिन क्या है सांख्य नहीं बताता है, गीता बताती है. कहती है कि यह देखो, यह मेरी ये लोअर नेचर है, लोअर प्रकृति है जिसके बारे में गीता बताती है, सीमित प्रकृति, और दूसरी मेरी प्रकृति परा प्रकृति, उसके बारे में अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वह सुनो. तो वहां पर हम देखते हैं कि विस्तार से बताते हैं, और यहां तक गीता ले जाती है कि परा प्रकृति का मानव प्रकृति के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट वो भी बताते हैं कि वही जीव बनी है, चैत्य सत्ता उसी परा प्रकृति का टच कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और उसमें वो स्वभाव के रूप में इंपल्शन डालती है. मतलब ही टेक्स अस वेरी फार. उसके बाद वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली थिंग लेफ्ट. इसलिए गीता की का योग अगर कोई सच में ध्यान से देखे और प्रैक्टिस करे तो तैयार कर देता है हम लोगों को रूपांतरण के लिए. रूपांतरण की बात नहीं है गीता में, लेकिन काफी दूर तक. इन फैक्ट ऑल दिस अपोजिट टर्म्स आर मियरली जनरल कंडीशंस फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियस बींग इन दैट ट्रांसेंडेंट हु इज ऑलवेज वन नॉट ओनली बिहाइंड बट विद इन ऑल कंडीशंस हाउ एवर अपेरेंटली अपोजिट. अब वो बता रहे हैं इस ट्रिनिटी ऑफ वो कैसे प्रकट होता है, एंड द ओरिजिनल यूनिफाइंग स्पिरिट स्टफ ऑफ देम ऑल एंड द वन सब्सटेंशियल मोड ऑफ देम ऑल इज दैट विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अवर थॉट एज द ट्रिनिटी ऑफ सच्चिदानंद एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस. These are everywhere the three inseparable divine terms. अब क्या कह रहे हैं कि duality एक condition है oneness की तरफ. अब इसको ऐसे देखें, बच्चा class में जाता है तो pass होता है, fail होता है, stress होता है, करता करता जाता है. अंत में जब वो मान लीजिए कोई scientist बन गया, nuclear scientist, अब क्या है वो pass fail become irrelevant. अब वो एक शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में चला गया है, अब वो ज्ञान से और बृहद ज्ञान की ओर जा रहा है. मानव संबंध में भी ये अप्लाई करता है. इस पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है. कहते हैं कि पहले कुछ वर्षों में कहते हैं ना सब हांकी डोरी होता है, सब बड़ा अच्छा होता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, 2 साल 5 साल 7 साल व्हाटएवर इट इज, फिर एक पीरियड और मान लीजिए 7 साल का समझ लीजिए जिसमें लड़ाई झगड़ा चलता है, फिर और 7 साल ऐड कर दीजिए जिसमें आप वो देख रहे हो लेकिन देखना नहीं चाह रहे हो. अगर आप ये 20 साल क्रॉस कर जाएंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है, स्टडीज हैं एक्चुअल, मतलब जिसमें अफेयर्स वेयर सब हो जाते हैं, उसके बाद जो संबंध होता है उसके अंदर एक प्रेम की अलग मिठास होती है. क्यों? अरे जानते हैं हम ये, अरे ये ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं है. अब देखिए कहाँ गया वो संबंध, अब प्रेम में चेंज हो गया. तो आपका झगड़ा कलह क्लेश अपने आप, ये हमारे पेरेंट्स इस बात को जानते थे क्योंकि वो फोर्स्ड हो गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे तो वो पर फोर्स वो जीवन ऐसे जीते थे. अंत में कहते हैं हाँ ठीक है, जब बच्चे नहीं समझ पाते कहते हाँ हाँ तुम्हारी मम्मी ऐसी है, और वो कहती ये ऐसे ही हैं पापा तेरे, पर उसमें एक प्रेम होता था. अब हम उसको नहीं, वो सस्टेन करना मुश्किल होता है. तो पहले जीवन ड्युअलिटी से शुरू होता है जिसमें आपको अच्छा बुरा, अगर आप इसको सस्टेन कर लोगे, वही चीज योग में भी लागू होती है. शुरू में योग में कठिनाई और इजी पीरियड, कठिनाई इजी पीरियड, अगर आप इसको सस्टेन कर लोगे 12 साल मैक्सिमम 15 साल, उसके बाद हाईवे पर आगे ग्रैंड ट्रंक रोड पे, शुरू में कठिनाई है. तो यहां पर श्री अरविंद यही चीज को बता रहे हैं कि शुरू में ये ड्युअलिटी वाला फेस है लेकिन वो वननेस की तरफ ले जाता है. तो वो जो वननेस है वो क्या है, सच्चिदानंद एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस प्लीज। अब उसमें वो उदाहरण देके बता रहे हैं कि सब जगह ये सब है, नन ऑफ देम इज रियली सेपरेट। जहां सत्ता है वहां चेतना है, वो अणु के अंदर भी चेतना है। अगर चेतना नहीं होती, हम लोग तो स्टडी करते ना एटम की लॉज, तो कैसे कैसे काम करता है अगर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नॉलेज तो है ना कहीं ना कहीं। अगर मान लो एटम के अंदर ये ज्ञान नहीं होता कि तुम बाहरी लेयर में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो एटम तो कोलैप्स कर जाता। साइंटिस्ट इतनी डिटेल स्टडी करके बुक्स लिखते हैं, लेकिन एटम के अंदर ये नेचुरल 7 स्वाभाविक है, इतना ज्ञान तो है। वो जैसे ही उसके अलग जाता है वो, अब यूमे से प्रकृति, बात तो वही हुई ना कि उसकी प्रकृति में ये इनबिल्ट है, सिस्टम में है। नहीं तो देखा जाए तो एक अणु कितना बारीक, जिससे सारा मेटेरियल यूनिवर्स बना है, स्टार्स तक बने हैं। और अगर उसकी गति में जाएं, एक भविष्यवाणी हुई थी कुछ समय पूर्व 90s में हुई थी कि ये जो 2 गैलेक्सीज हैं, एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी और एक और गैलेक्सी, ये कितने बिलियन ईयर्स के बाद एक दूसरे में कोलैप्स करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टाइम था। अब वो कहते नहीं 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 नहीं, हमारा कैलकुलेशन गलत था, नहीं होंगी। पॉइंट ये नहीं है कि होंगी कि नहीं होंगी, पॉइंट है आप देखिए अणुओं से बनी हुई गैलेक्सीज चक्रवात में घूम रही हैं किस स्पीड के साथ। कोई तो चीज है ज्ञान जो उसको संभाले हुए ऑर्डर में रखता है हर चीज को। हम चींटियों के ऊपर पुस्तक लिखते हैं हम लोग वैज्ञानिक स्टडी करके, चींटी अपने से 3 गुना अधिक भार उठा करके चलती है। हम लोग ट्राई करें 60 किलो वजन वाला 200 किलो उठा करके चले अपने, वो बड़े मजे जाती हैं चीनी को उठा करके। और कम्युनिकेशन देखिए उनको, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, 1G 2G 5G 6G नथिंग, पर चींटियों का कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना अच्छा है। मैंने तो अनुभव से सीखा है कि मेरे बेड पर अगर एक दाना गिर जाए गलती से, रात को पता नहीं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, और वो नहीं पता चलता है। एक आएगी कहीं और, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, डोंट नो, दे कम दे फाइंड ए वे। तो ये जो ज्ञान उनके अंदर है, एक बीज के अंदर ज्ञान है कि उसको यही वाला वृक्ष बनना है। सो जहां एग्जिस्टेंस है वहां चित है, ये शेरविन बता रहे हैं। हाँ, वो चित यानी चेतना वैसी नहीं है जैसी हमारी है। हमको लगता है कि प्लांट तो सोचता नहीं है, पहले तो हमारे पास कोई इसका कन्विंसिंग प्रूफ नहीं है कि सोचता नहीं है, पर चलो मान लेते कि नहीं सोचता है, महसूस करता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, चेतना है। और अब तो इसके रिसर्चेज हैं कि दे रिस्पॉन्ड, व्हाट वी कॉल अनकॉन्शियसनेस इज सिंपली अदर कॉन्शियसनेस। जैसे कोई व्यक्ति एनेस्थीसिया में, कहते ना अनकॉन्शियस हो गया, वो व्यक्ति पता नहीं सुन रहा है। डॉक्टर लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, सर्जन की, मैंने तो देखा हुआ है, मरीज को काट रहे हैं वहाँ गप मार रहे हैं। मुझे तो पहले शॉक लगता था, अब 8-8 घंटे का ऑपरेशन हो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या किया, वो कह रहे हैं हम तो पराठे खा के आए, कि हाँ एक्चुअल बता रहा हूँ आपको। अब सोचो मरीज के अंदर क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ रिसीव कर रहा है। एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति अचेत है जिसके सामने आके एक डॉक्टर ने कहा ये तो बचेगा नहीं ज्यादा दिन, एल्कोहलिक था, सबको पता था ये बचने वाला नहीं है। अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो जाग गया, कहता है डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर प्लीज डोंट से दिस, फिर गिर गया, फिर बेहोश हो गया, और सच में 2 दिन में चला भी गया। तो ये जो हम कहते हैं अचेत है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, निमांस में भी हुए, देर इज नथिंग विच इज फुल्ली अनकॉन्शियस। इसीलिए ये जो यूथेनेसिया ये सब की, भाई ये तो इसको तो पता नहीं, कई बार लोग कहते हैं ना व्यक्ति की पीड़ा, इसलिए उसको डॉक्टर को यूथेनेसिया, भैया व्यक्ति को नहीं हो रही है, तुमको हो रही है, रिश्तेदारों को, तो वो एक अलग बात है। वेंटिलेटर के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कोई ना कोई चीज़ उसकी चेतना अंदर अनुभव कर रही है, लेकिन अदर कॉन्शियसनेस अलग प्रकार से अनुभव कर रही है, और इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ये चीज जड़ तत्व के साथ भी लागू होती है, इसीलिए कहा गया है कि जहां पर यज्ञ होता है, जहां तपस्या हुई है, वहां के ईंटों में भी वो घनीभूत चेतना हो आ जाती है। कई लोग पूछते हैं आश्रम के बारे में, जैसे स्कूल के बारे में पूछते हैं, ऐसा है वैसा है. मैंने कहा बाकी सब छोड़ दो, ये तुम्हारी मानवीय बुद्धि है, बुद्धि के परे की बात है. तुम तो जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं समझते नहीं, लेकिन ये चीज़ डिनाई करते हो क्या कि ये शेरविंद आश्रम के बिल्कुल सामने है स्कूल? हाँ, वो तो सब तो फिजिकल फैक्ट है. अब देखिए क्या अंतर हो गया. श्री अरविंद माता जी की तपोस्थली में आप श्वास ले रहे हो, ग्रो कर रहे हो. ये ईट ईट में बसी हुई है यहाँ की. माता जी ने इसको कहा भी है, यू कैनॉट बी हियर विदाउट ब्रीदिंग माई एटमोस्फियर. अब आपको पता चले नहीं चले ये तो आपकी इवोल्यूशन के ऊपर है. व्यक्ति अचेत हो, उसके सामने लोग क्या बातें कर रहे हैं उसको हो सकता है ना पता चले, लेकिन हर चीज कॉन्शियस है, छिपी हुई कॉन्शियसनेस है, जागृत की जा सकती है. इट इज द गोइंग इन ऑफ दिस सरफेस वेव ऑफ आर मेंटल अवेयरनेस ऑफ आउटर ऑब्जेक्ट्स इनटू आर सबलिमिनल सेल्फ अवेयरनेस एंड इनटू आर अवेयरनेस टू ऑफ अदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस. वी आर रियली नो मोर अनकॉन्शियस when we are asleep or stunned or drugged or dead or in any other state than when we are plunged in inner thought oblivious of our physical selves and our surroundings. होता है, ये साथ तो परसों हुआ, वो आश्रम के बाहर निकला. वैसे आपको नशा रहता है, नशे में आप बाहर निकले, सामने में वो रील बना रहे थे कोई, एक लड़का और एक लड़की. अब मेरे अंदर आए, मैं बेचारों को पेमेंट पर है, मैं साइड से हो जाता, लेकिन वो नशा था. तो पेमेंट पर मैं पाँव रखने गया तो वो मुंडेर पर पाँव लगा तो फटाक से गिरा. तो वो लोग थे एग्जाम में, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं नहीं रील बनाओ, ठीक हो हल्की फुल्की. क्योंकि हम लोग के तो ये मान्यता है ना, कोई बड़ी चीज़ होने वाली थी छोटे में टाल दी. दिस ए वेरी गुड फार्मूला. छोटी चोट लगी, बड़ी लगने वाली थी, माने छोटी सी चोट दी, हल्का सा झटके ने बड़ा झटका बचा दिया. पर होता है. तो क्या वाज आई अनकॉन्शियस? नो, आई वाज इन माय ओन स्टेट. मेरी आंखें खुली थी. और थॉट्स में भी ये होता है कि कई बार आप थॉट में इतने ऑब्लिवियस होते हो कि आप नहीं देख पाते हो कि आपके बगल से कौन गुजर गया. तो ये उसमें क्या आप अनकॉन्शियस थे? नहीं थे. आपकी चेतना सरफेस पे आती है, जिसको हम कहते हैं मेंटल अवेयरनेस. अंदर चली गई, सबलिमिनल अवेयरनेस, बहुत गहराई में चली गई, तो सच्चिदानंद के साथ एक हो गई अवेयरनेस. तो ये है वही कॉन्शियसनेस, लेकिन वो खेल खेलती है. ऊपर में वेव्स तो आपको दिखती है, और कह देते हैं हम कि समुद्र नहीं, वेव्स ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं शांत है. अंदर जाओ, पूछो समुद्र कितना शांत है, पता चलेगा कितना शांत है. तो ये उसी प्रकार से आगे कहते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट एग्जिस्टेंस एंड अनडिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट गो टुगेदर. क्योंकि अब कहते हैं चेतना, जहां सत्ता है वहां चेतना है, ये तो QED प्रूफ हो गया. अब आनंद के बारे में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि आनंद हम जैसे हम समझते हैं, व्हाट वी कॉल मिजरी ग्रीफ पेन एब्सेंस ऑफ डिलाइट इज अगेन मियरली ए सरफेस वेव ऑफ द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस विच टेक्स ऑन टू आर मेंटल एक्सपीरियंस दीज अपेरेंटली अपोजिट टिंट्स बिकॉज ऑफ ए सर्टेन ट्रिक ऑफ फॉल्स रिसेप्शन इन अवर डिवाइडेड बींग. अब ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी प्रिय चीजें बड़ा आनंद आ रहा है, ये मेरी प्रिय चीजें बड़ा आनंद आ रहा है, चली गई. अब क्या हुआ? दुख हुआ. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रिक क्या है यहां. चीज में अभी भी वही आनंद है, लेकिन आपने मेरी चीज है यहां पर यह समस्या हो रही है. अगर ये चीज आप पहाड़ घूम के आएंगे, कितने समय तक उसका आनंद आपकी स्मृति में रहता है? रहता है. पिक्चर देख तो अरे वाह, ये लद्दाख में हम भी गए थे, क्या माउंटेन्स है वहां, ग्रीन है, ब्लू है. मुझे तो अभी भी याद करूं बड़ा जॉय है वो. अब Because you that delight is inherent in the existence. लेकिन ट्रिक क्या होती है? मेरी है, वहां प्रॉब्लम शुरू हो गई. वरना अगर किसी, इसीलिए कहते हैं किसी को अगर प्रेम करते हो या जॉय तो सदैव रहता है, वो कैसे जा सकता है? लेकिन ट्रिक क्या होती है? फॉल्स रिसेप्शन, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग. तो सरफेस पे सुख दुख का खेल होता है, लेकिन अंदर में हम चले जाएं तो देर इज ओनली ब्लिस हर चीज के अंदर। इसलिए दुकान पे जाते हैं जब तक ये कि अरे ये साड़ी कितनी अच्छी है, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, विंडो शॉपिंग ना डिप्रेशन का एक पक्का इलाज। अब विंडो शॉपिंग नहीं, अमेजोन पे चले जाइए, अरे वाह कितना अच्छा सूट। लेकिन आपने जैसे ही अपना कार्ड निकाला ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इट्स ए फैक्ट, कोई मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं। तो ये है हर चीज के अंदर, उस मटेरियल को देख के आपको जॉय मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपनाना चाहते हो ना वहां उसका जॉय चला जाता है, आपके पॉकेट में समा जाता है। और पैसा है तो भी प्रॉब्लम है, आपने खरीद लिया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपने खरीदा बहुत एक्सपेंसिव स्टोर से, कहने वाले ने कह दिया सरोजनी नगर मार्केट से लाए थे क्या, हमने यही कपड़ा 500 रुपए में वहां देखा था, अभी देखिए आपके चेहरे की शक्ल। आप बड़े अंदर में गर्वान्वित हो रहे हो कि हमने 10,000 की चीज खरीदी। अब किसी ने कहा हाँ हाँ ये ना वो मार्केट है उसमें ये 1,000 रुपए की मिल रही थी, अब देखिए आपका चेहरा कैसा सिकुड़ेगा। तो ये तो आपकी समस्या है, लेकिन उसमें जॉय तो वही है ना जो आपको पहले महसूस हुआ, पैसे से उसके जॉय का मूल्यांकन थोड़ी होता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम आवर एब्जॉर्प्शन इन दीज सरफेस हैबिट्स दीज पेटी ट्रिक्स ऑफ आवर मेंटल बीइंग एंड व्हेन वी डू गेट बिहाइंड एंड अवे फ्रॉम देम इट इज सरप्राइजिंग हाउ सुपरफिशियल दे आर व्हाट रिडिकुलसली वीक एंड लिटिल पेनिट्रेटिंग पिन प्रिक्स दे प्रूव टू बी। यही तो होता है लव स्टोरी हेट स्टोरी में, नहीं मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता या चाहती, अरे भाई 2 दिन पहले वो तुमको बहुत जॉय हो रहा था उसको देख के, ऐसा क्या हो गया। अब ये देखिए बदला कुछ उसके अंदर आपके अंदर, लेकिन वो सेम कॉन्टैक्ट इज नो मोर एबल टू गिव यू दैट जॉय। तो यहां पर है हर जगह, लेकिन सरफेस चेतना कैसे रिएक्ट करती है ऐसे। तो अब फिर वो बताते हैं कि जैसे चित सर्वत्र है, जैसे एग्जिस्टेंस सर्वत्र है, वैसे ये आनंद सर्वत्र है, लेकिन ये हायरार्किकली जड़ तत्व से मनुष्य तक वो अपने को अनफोल्ड करता है। सत्ता ज़्यादा सक्षम होती है और चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए और आनंद को अलग रूप से प्रकट करने के लिए। पशु का आनंद केवल भोजन में है, मैथुन में है, और मनुष्य थोड़ी बहुत किलोल भी करते हैं, और मनुष्य का आनंद पोइट्री में है, म्यूजिक में है, एक सुंदर फिलोसॉफिकल बुक पढ़ने में, एक सिनेमा में है, बातचीत में। देवताओं का आनंद शांति में है, सौम्यता में है, कर्म में है। देखिए आनंद है, मनुष्य लास्ट लिमिट नहीं है। तो मनुष्य के ऊपर भी सत्ताएं हैं, ऊपर भी चेतना की अवस्थाएं हैं, और उसके ऊपर भी आनंद की अवस्थाएं। ये शेरविन यहां एक लंबे पैसेज में कि दिस इवोल्यूशन इज रियली ए मैनिफेस्टेशन एंड जस्ट एज वी हैव इन अस दिस सब नॉर्मल सेल्स एंड सब ह्यूमन प्लेन्स सो आर देयर इन अस अबव आवर मेंटल बीइंग सुपर नॉर्मल एंड सुपर ह्यूमन प्लेन्स देयर इज अबव द माइंड एज द ओल्ड वैदिक सेजेस डिस्कवर्ड ए ट्रुथ प्लेन ए प्लेन ऑफ सेल्फ ल्यूमिनस सेल्फ इफेक्टिव आइडियाज देयर इज नो सीकिंग बट रादर नेचुरल पोजिशन नो कन्फ्लिक्ट और सेपरेशन बिटवीन विल एंड रीजन इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स डिजायर एंड एक्सपीरियंस। आपने छल्ला अंगूठी का एक उंगली से निकाला दूसरे में पहना, आपको तो लॉस का आभास नहीं हो रहा है, आपका जॉय मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन आपने जिस चीज को समझा मेरा है वो कहीं और चली गई। तो यहां सेल्फ पोजीशन है, हर चीज जब आपकी है आप उसमें हो तो ये सेंस चला जाता है, दूसरा भी जॉय ले रहा है तो उसमें भी आपको जॉय आता है, मल्टीप्लाई कर जाता है वो जॉय। तो हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं इसके ऊपर। देयर विल एंड नॉलेज एंड सेंसेशन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज पावर्स मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस आर नॉट मियरली हारमोनियस concomitant, unified, but are one being of consciousness and power of consciousness. तो अति चेतन एक अवस्था है जिसमें आप विभक्ति नहीं है, अभी हमारे thought में, feeling में, will में, सब में आपस में सामंजस्य नहीं है, harmony नहीं है, लेकिन वहाँ पर complete harmony है, पूर्ण सामंजस्य है। तो जो हम जो देखा देखा जाता है वही कृत्य होता है। इसलिए वहाँ कभी आप नहीं सुनेंगे कि डिवाइन और शक्ति के ये दो प्रकार, एक जहाँ पर कोई वाद संवाद नहीं है, विवाद भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली समझ रहे हैं। जो नॉलेज है वही विल एक्सिक्यूट करेगी, वो है सुप्रामेंटल। और उसके नीचे आप देखेंगे कि वाद विवाद संवाद शुरू होता है। तो अब यही संबंध शिव जी का, जब माता सती के साथ ये क्वेश्चनिंग अविद्यामयी, माता सीता के साथ भी वही, जब माता सीता श्री राम से प्रश्न करती हैं और बाद में लक्ष्मण, तो वहाँ पर अविद्या का प्रारंभ होता है। अदरवाइज देर इज परफेक्ट हारमोनी, देर इज नो डिसहारमोनी। इसका परफेक्ट उदाहरण हम श्रीमा श्री अरविंद के जीवन में देखते हैं। इसलिए जब किसी ने पूछा कि आश्रम में कोई परफेक्ट सरेंडर का उदाहरण बताओ, उन्होंने कहा दो साधक हैं जिनमें परफेक्ट सरेंडर है। कहा कौन? कहा पास आओ, जोर से नहीं बता सकते साधकों के नाम। पास में गया व्यक्ति, कौन? कहते हैं द मदर टू श्योरबिंदो एंड श्योरबिंदो टू द मदर। एब्सोल्यूटली नो क्वेश्चंस। ये चीज, और कभी अगर कोई साधक कहता था कि सर आपने तो ऐसा आप कह रहे थे लेकिन माँ ने ऐसा कहा, ओके देन माँ ने जो कहा है दैट्स। माँ से कोई कहता था कि शेरविंद ने ऐसा, ओके शेरविंद ने कहा है दैट्स। परफेक्ट, ऐसा कोई सिंगल एग्जाम्पल मैं स्पिरिचुअल हिस्ट्री में मैनकाइंड के नहीं पाता हूँ। श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच में भी, सत्यभामा के बीच में अनबन होती थी, और अर्जुन की तो बात ही क्या करें हम बेचारे लेकिन श्रीमान शेरविंद के बीच सच ए परफेक्ट, जो शेरविंद ने कहा वो उनके लिए आदेश है, जो माँ ने कहा वो शेरविंद के लिए स्वीकृति है। तो ये जो है वो सुपरमेंटल एक्शन है। सुपर माइंड में ये दोनों एक हैं, आनंद भी एक है, सब कुछ एक साथ है और हार्मोनाइज्ड है। एक मतलब ये नहीं कि कहीं खिचड़ी बन गई, सब हैं साथ में अपनी भिन्नताओं को लिए हुए, लेकिन वो हार्मोनियस है कहीं पर भी। तो उसका वर्णन है, ऑल इज चित बिकॉज ऑल इज सत, ऑल इज वेरियस मूवमेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑल इज वेरियस मूवमेंट ऑफ द ओरिजिनल बींग। When we find, see or know chit, we find also that its essence is ananda or delight of a self-existence. The divine, whether it manifests itself in all quality or in no quality, sarvgun ya nirgun, in personality or impersonality, in the one absorbing the many or in the one manifesting its essential multiplicity, is always in possession of self bliss and all bliss because it is always Sachidanand. यही अनुभव लोगों को माँ श्री अरविंद के साथ होता था। अलग अलग लोग, भिन्न प्रकृति के लोग, very different in every way of thinking. But when they come and meet mother and go back, they all feel heightened, greatened. ये beauty है, क्योंकि वो सबके अंदर वो manifold आनंद। और अंत में, the individual soul does not possess this true nature of itself or realize this true nature of its experience because it separates itself both from the essential and the universal and identifies itself with the separate accidents, with the unessential form and mode and with the separate aspect and vehicle. Thus it takes its mind, body, life stream for its essential self. तो ये भूल कहाँ होती है? भूल ये होती है कि जो हमारे self है, individual self है, वो universal और transcendent के साथ identify नहीं करके, वो ego personality के साथ, वो शरीर के साथ, मन के साथ, जीवन शैली के साथ, हृदय के भावों के साथ, तरंगों के साथ, बाहरी चेतना के साथ आइडेंटिफाइड है, इसलिए वो सुख दुख का अनुभव करता है। यदि वो सच्चिदानंद के साथ एक होगा तो हर किसी में, हर अवस्था में वो आनंद को प्राप्त करेगा, हर किसी के अंदर उसको भगवान का दर्शन होगा। और ये मतलब नहीं दर्शन हो रहा है, फिर से वही बात, वो बाद में शेयर में बताते हैं कि सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार करेगा, नहीं, वो जो व्यवहार होगा हर किसी के साथ वो डिपेंड करेगा कि वो जो सत्य चेतना है उसके अनुसार क्या व्यवहार होना चाहिए। श्री कृष्ण दुर्योधन के अंदर भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर भी हैं, लेकिन अंतर है व्यवहार में। वो दुर्योधन को कहते हैं तेरा तो विनाश होने वाला है, लेकिन अर्जुन के साथ वो खड़े हैं। हालांकि उनमें भी श्री कृष्ण है, इनमें भी। तो जब दुर्योधन क्या है, वो आइडेंटिफाइड है। और यही लोग कई बार, कर्ण और अर्जुन में डिफरेंस क्या है, अनेकों डिफरेंस कई बार मैंने बताया, पर बात ये नहीं है कि दोनों कैसे धनुर्धर हैं, कैसे हो सकता है एक बड़ा हो छोटा हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ण पूरी तरह अपने अहंकार के साथ आइडेंटिफाइड है। पहला अहंकार, मैं सुतपुत्र लेकिन वास्तव में मैं क्षत्रिय हूं। दूसरा अहंकार, मैं अर्जुन से कहीं अधिक सुपीरियर हूं। तीसरा अहंकार, दुर्योधन का मित्र हूं, मुझे ये मित्रता निभानी है। यदि अर्जुन में भी यही अहंकार रहते तो कौन जाने कि युद्ध का क्या निर्णय होता। लेकिन स्मार्ट मूव क्या करते हैं श्री कृष्ण, युद्ध के पहले एक चीज स्पष्ट हो जाती है अर्जुन को, होऊंगा मैं कुछ भी लेकिन इनका हूं, इनकी प्रेरणा से मुझे युद्ध लड़ रहा हूं, यही मेरे साथ खड़े हैं। वो जानता था इस बात को कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि यदि अर्जुन ये कहता कोई बात नहीं है कृष्ण, मेरी आपकी जरूरत नहीं है, वैसे आप साइड में बैठो, मैं हूं अर्जुन, हूं मैं महान अर्जुन, दिव्यास्त्रधारी अर्जुन, हु नोज, भीष्म ही उड़ा देते, बाकी वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। यही अंतर है कि अर्जुन अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा श्री कृष्ण के सहचर के रूप में। क्यों? श्री कृष्ण उसको ये सीक्रेट बता देते हैं, अवसर आ गया है ये सीक्रेट बताने का कि नर नारायण है, तू नर है, मैं नारायण हूं। अर्जुन को जब सीक्रेट पता चल जाती है तो अब वो सुख दुख के बाहर आ गया है, और अब वो युद्ध कोई उसका व्यक्तिगत युद्ध मात्र नहीं है, वो अब यूनिवर्सल चेतना में जो बेस्ट है, भगवान जो परात्पर हैं, ट्रांसेंडेंट हैं, वो विश्व के अंदर जो खेल लीला रच रहे हैं उसमें उस इंडिविजुअल अर्जुन का क्या रोल है, यह वो जान गया है। यही बस अंतर है। यहाँ शेरविंद यही बता रहे हैं कि हमारी सोल इस आनंद को नहीं जानती है क्योंकि वो बाहर आइडेंटिफाइड है। दिस फ्रेगमेंटरी एस्पेक्ट और रादर कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटरी एक्सपीरियंसेस इट कंबाइंस अराउंड एन आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस द मेंटल ईगो एंड कॉल्स दैट इट सेल्फ एंड इट सर्व्स दिस ईगो एंड लिव्स फॉर इट्स सेक instead of living for the sake of that something greater and beyond of which all aspects, even the widest and most general, are partial manifestations. This is the living in the false and not the true self. तो बस यही है, हमको बस एक हल्का सा अपनी सच्ची पहचान ढूंढ लेंगे तो सच्चिदानंद की का अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। मूल रूप से वी नो दैट आवर एग्जिस्टेंस मृत्यु से समाप्त नहीं होता बिकॉज हम डिवाइन एग्जिस्टेंस का ही पोर्शन है। हमारी चेतना हम तक सीमित होगी लेकिन हम असीम से जुड़े हैं, तो हमारी शक्ति और चेतना की कोई लिमिट नहीं है। और चूंकि हम उस परम आनंद से जुड़े हैं तो सुख दुख की जगह हर अवस्था में व्यक्ति आनंद को अनुभव करने लगता है। सच्चिदानंद माँ।